हील हो जाती है, कम हो जाती है। और तीसरी चीज रिकॉल, मेमोरी रिकॉल, हमारी जो शक्ति है याद रखने की वो बहुत पुअर हो जाती है। बेसिकली दीज आर क्वालिटी ऑफ दीज पीपल ऑफ कलयुग, इसमें हम सब शामिल हैं। तो कलयुग जो है को कैसे पहचानते हैं, कलयुग को पहचाना जाता है जैसे आप प्रभुपाद जी बताते हैं कि बेसिकली बेसिकली सी है दैट योर लाइफ स्टार्ट रूलिंग,
मतलब शूद्र जो है स्टेट की रूल्स को चलाएंगे। इस युग में निग्लेक्ट होगा विमेन्स का, बच्चों का और ब्राह्मणों का, मतलब इनका पतन होगा, इनकी बहुत ज़्यादा हीनता की जाएगी। और इसी तरह से बताया जाता है कि इलिसिट रिलेशनशिप बढ़ेंगे और भगवान, जैसे बोलते हैं भगवान के बारे में डिनायल होगा, फेथ कम और कम से कम होता चला जाएगा। और हर बार हमको साइंस की या किसी और मेथड की ज़रूरत पड़ेगी टू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। बेसिकली एट एवरी स्टेप वी वुड एक्चुअली डिनाय द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो ये बताया जाता है कि ह्यूमन जो फॉर्म है, जो प्रेजेंट स्टेट में है, इनको फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर फेथ, अकॉर्डिंग टू द फेथ इन दी ह्यूम इन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। फेथ कितना और कितना स्ट्रांग है इसके ऊपर चार डिफरेंट ग्रुप्स में विभाजन किया जाता है। और इसमें चार क्लासेस जो बताए जाते हैं, क्लास वन में वैष्णव आते हैं और ब्राह्मण आते हैं, क्लास टू में जो है क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आते हैं, और क्लास थ्री जो है मलेशियस और यवनाज आते हैं। मलेशियस आर बेसिकली मीट ईटर्स एंड यवनाज आर दोज हु डू नॉट फॉलो द वैदिक संस्कृति, वैदिक लिटरेचर। एंड फोर्थ क्लास प्रभुपाद जी लिखते हैं चंडाल होते हैं, डॉग ईटर्स। तो बेसिकली ये चार डिफरेंट कैटेगरीज है, क्लासेस है ऑफ द ह्यूमन अकॉर्डिंग टू द फेथ इन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो क्या होता है बेसिकली यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी और कम्युनिटी, उसके बेसिस पे नहीं है ये, ये बेसिकली एक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है। जो कोई भी, जैसे कोई भी ब्राह्मणिकल परिवार में पैदा होके शूद्र जैसी क्वालिटीज एक्वायर कर सकता है और शूद्र की एक्टिविटी कर सकता है, इसी तरह से किसी भी शूद्र परिवार में या नीच परिवार में कोई पैदा होता है मे बी ऑफ अ ब्राह्मिकल क्वालिटीज। तो ये दिस डज नॉट एक्चुअली रिलेट टू द बर्थ एंड इट इज नॉट अ बर्थ राइट, ये हमारे बर्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है हम कैसी क्वालिफिकेशन एक्वायर करते हैं, विच मीन्स दैट वी कैन क्वालिफाई टू बी एट डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल इन द सोसाइटी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर of ours and depending upon the activities we perform and faith we have. तो इस तरह से धीरे धीरे basically ये qualification acquire की जा सकती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि basically आज के युग के politician के बारे में reference देते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं कि these are the people actually who are low class of people by their qualification. Qualification hum aur aap nahi banate hain, qualifications are already written in the shastras. So anybody who qualifies to be a better person are already given the qualities. So if we acquire those qualities वी ऑटोमेटिकली फॉल इन अ बेटर क्लास ऑफ पीपल। तो इसी तरह से बताया जाता है कि बेसिकली इन दी कलियुगा लोअर क्लास ऑफ पीपल वुड बिकम एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि दे वुड एक्चुअली मोडिफाई एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स देयर ग्रीड्स। एंड इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस तरह से जैसे आज के ज़माने में हम भी देखते हैं कि बहुत सारे स्कैम्स वी कैन सी और बहुत सारे सो कॉल्ड हमारे लीडर्स आर बिहाइंड बार्स फॉर डिफरेंट रीजंस। तो ये सब जो है बेसिकली इज एक्चुअली डिटीरियोरेशन इन द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स और रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड दीज प्रिंसिपल्स आर दीज फोर प्रिंसिपल्स विच आर बेसिकली ऑस्टेरिटी क्लीनलीनेस मर्सी एंड ट्रूथफुलनेस। जैसे ही इन चार चीजों का पतन होगा धीरे धीरे हमारी सोसाइटी का मॉरल वैल्यू का पतन होगा रिलीजियस प्रिंसिपल्स का पतन होगा और इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज दैट के बेसिकली एवरीथिंग गेट्स एक्चुअली डिस्टॉर्टेड इन द सोसाइटी। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं कि बेसिकली ह्यूमन जो फॉर्म ऑफ लाइफ है इट इज एक्चुअली फॉर द सेक्रीफाइस फॉर द यज्ञ। यज्ञ का मतलब क्या है कि जिसमें हम बहुत सारी ऑस्टेरिटी करते हैं। और यज्ञ पुरुष कौन है? श्री कृष्ण। तो जो भी हम यज्ञ करते हैं जो भी हम यज्ञ करते हैं जो भी हम सेक्रीफाइस करते हैं दैट सेक्रीफाइस शुड बी फॉर द सेक ऑफ सुप्रीम। और बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एक्चुअली सेक्रीफाइस डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे करते हैं। सेक्रीफाइस जैसे मान लो डेमीगॉड्स को खुश करने के लिए, जैसे आपने कृष्ण लीला वृंदावन में कृष्ण लीला में देखा होगा कि नंद महाराज वगैरह प्रिपेयर करते हैं फॉर पूजा ऑफ इंद्र डेमीगॉड। तो कृष्ण बोलते हैं कृष्ण के डेमीगॉड की पूजा करने की जरूरत नहीं है, यू डू प्रेयर ऑफ गोवर्धन पर्वत। तो इस तरह से बेसिकली भगवान कृष्ण प्रूव करना चाहते हैं कि इट इज नॉट द डेमीगॉड्स हु एक्चुअली अवॉर्ड द फ्रूट ऑफ योर एक्टिविटीज टू यू, इट इज ही हिमसेल्फ हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हु इज एक्चुअली द डिलीवरर ऑफ एवरीथिंग इवन टू द डेमीगॉड्स। तो इन यज्ञों से क्या होता है, जैसे हम देखते हैं यज्ञ से बेसिकली डेमीगॉड्स खुश हो जाते हैं। डेमीगॉड्स कौन कौन है, जैसे इंद्र खुश हो गया, चंद्र वरुण ये खुश हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, रेन आएगी। रेन से क्या होगा, ग्रेन्स पैदा होंगे, मतलब फसल पैदा होगी। और जैसे फसल पैदा होती है तो अन्न हम लोग अन्न का सेवन करते हैं। अन्न का सेवन से बेसिकली इट्स अ लाइफ साइकिल, यू नो हाउ इट गोज, मतलब सेक्रीफाइस किया, रेन हुई, अन्न का उपजाऊ जमीन उपजाऊ हुई, अन्न के आने से हमने अन्न को ग्रहण किया, ब्लड और सीमेन में अन्न के जाने से अनदर लिविंग एंटिटी पैदा होने की शक्ति आई। और इस तरह से साइकिल ऑफ लाइफ साइकिल इज एक्चुअली कंटिन्यूज। तो बेसिकली फॉर द एज ऑफ कली संकीर्तन आंदोलन इज कंसिडर्ड द यज्ञ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जैसे हर युग में डिफरेंट डिफरेंट यज्ञ है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्रीफाइसेस है, इसी तरह से कलयुग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यज्ञ इज बेसिकली संकीर्तन आंदोलन विच वॉज इनिशिएटेड बाय चैतन्य महाप्रभु अबाउट 500 एंड मोर देन 500 ईयर्स बैक. तो बेसिकली सारी चीज इस तरह से घूमती है, इस तरह से काम करती है. तो जैसे मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था कि परीक्षित महाराज जब अपने अपने राज्य में जाते हैं तो वहाँ पर शूद्र को वो देखते हैं. बेसिकली शूद्र क्या कर रहा था कि वो रिलीजन का पतन कर रहा था, और काओ मतलब पर्सोनिफाइड धरती के ऊपर अत्याचार कर रहा था. और फिर क्या करते हैं परीक्षित महाराज जो है अपनी तलवार खींचते हैं और बोलते हैं कि यू कैनॉट यू नो डू दिस एज लॉन्ग एज आई एम रूलिंग दी अर्थ. यू कैनॉट बी दी रूलर एंड यू कैनॉट डू एनी ऑस्टेरिटी और एनी अत्याचार ऑन एनी ऑफ दी लोअर लिविंग एंटिटीज. जिस कोई किसी भी जीव के ऊपर आप इस तरह से किसी तरह का अपराध नहीं कर सकते हैं, किसी तरह से उनको हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं. तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि बेसिकली अब जो शूद्र है उसे समझ में आ गई बात, उसे समझ में आ गई कि अगर मैंने कुछ भी अभी किया तो आई विल बी किल्ड, तो मुझे मार दिया जाएगा. और शूद्र जो है अपने आप को सरेंडर करता है इमीडिएटली, हाथ जोड़ के परीक्षित महाराज के चरणों में गिर जाता है. और जैसे ही वो चरणों में गिरता है, और राजा का क्या फर्ज होता है, टू टेक केयर ऑफ दोज हु सरेंडर अनटू हिम. तो वो अब परीक्षित महाराज जो है धर्म संकट में पड़ जाते हैं. अब वो जो है उसको यू नो ही कांट किल हिम. तो जैसे ही वो उनके सरेंडर में आ जाता है तो अब परीक्षित महाराज से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जो है आपके राज्य में थोड़ी सी जगह दीजिए. तो थोड़ी सी जगह दीजिए तो परीक्षित महाराज बोलते हैं मैं तुम्हारे को कोई जगह नहीं दे सकता, देर इज नो प्लेस आई कैन अलॉट यू. लेकिन वो भी अड़ जाता है कि आपने मुझे शह दी है, आपने मुझे सरेंडर, मैंने आपसे सरेंडर किया है, लेकिन मुझे भी कोई जगह रहने के लिए दीजिए. इस तरह से परीक्षित महाराज बोलते हैं कि ऑल राइट दीज आर दी फोर प्लेसेस वेयर यू कैन लिव, ये चार जगह मैं तुम्हारे को देता हूँ जहाँ पर तुम रह सकते हो. और वो क्या क्या चार जगह हैं, इंटॉक्सिकेशन जहाँ पर अल्कोहल या इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं, और इलिसिट रिलेशनशिप प्रोस्टिट्यूशन जहाँ पर होता है वहाँ पर तुम रह सकते हो, और स्लॉटर हाउसेस जहाँ पर एनिमल की हत्या की जाती है वहाँ पर तुम रह सकते हो, और फोर्थ प्लेस इज अ प्लेस ऑफ गैम्बलिंग जहाँ पर जुआ खेला जाता है. इन चार जगहों पे तुम जो है रह सकते हो. और जब वो चारों तरफ देखता है तो इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है. परीक्षित महाराज के राज्य में उस समय की बात थी कि इस तरह की जगह उसे मिलती नहीं है. तो वो भी बहुत स्मार्ट है तो बोलता है परीक्षित महाराज को कि ठीक है इन चार जगहों में तो मैं रहना चाहता हूँ और रहूँगा, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, मतलब देर इज़ नो वे आई हैव हाउ आई कैन बी देयर. तो आप मुझे एक और स्थान दीजिए. और परीक्षित महाराज बोलते हैं ऑल राइट यू कैन लिव इन अ प्लेस ऑफ गोल्ड जहाँ पर धन दौलत है, गोल्ड है, तुम वहाँ रह सकते हो. नाउ यू नो हाउ द साइकिल स्टार्ट्स. मतलब कलयुग ने एंट्री ली गोल्ड से, और जहां गोल्ड रहता है वहां पर इंटॉक्सिकेशन रहती है, प्रोस्टिट्यूशन रहता है, मर्सी खत्म हो जाती है, गैम्बलिंग शुरू हो जाती है और स्लॉटर हाउस शुरू हो जाते हैं. सो यू नो द कली एक्चुअली स्टार्ट्स टू टेक ओवर द होल थिंग. तो इस तरह से कली की एंट्री होती है. और इसी तरह से प्रभुपाद जी बोलते हैं, और आप और हमने देखा है कि हमारे जो फोर प्रिंसिपल्स है ये इसी पे बेस्ड है. प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो चार प्रिंसिपल है, बेसिकली इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग एंड स्लॉटर हाउसेस, मीट ईटिंग, अगर हम इन चार प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, कोई भी जीव इन चार प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस ऑफ कलियुगा खत्म हो जाता है. बिकॉज कलियुगा इज एक्चुअली लिविंग इन दीज फोर और फाइव प्लेस. फाइव फिफ्थ प्लेस इज डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज बेसिकली टू मच ऑफ अ मनी. तो बहुत ज्यादा हैंकरिंग आफ्टर द मटेरियल एनर्जी इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम क्रिएटर, वुड ऑल्सो इन्वाइट. क्योंकि जब भी हम जरूरत से ज्यादा ग्रीड की तरफ जाते हैं तो वो मनी हमारी खून पसीने की कमाई नहीं होती है. इट इज ऑलवेज इन्वॉल्व्स सम काइंड ऑफ अ सिनफुल एक्टिविटी, एंड एनी सिनफुल एक्टिविटी वुड अट्रैक्ट अगेन प्रॉब्लम्स फॉर अस. तो इस तरह से सारा साइकिल जो है शुरू हो जाता है. तो बेसिकली यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी के जो राजा है उसका काम है कि वो समदर्शी हो, वो सबको एक ही नज़र से देखे, ताकि इवन द लोएस्ट ऑफ द लो इन द सोसाइटी डज नॉट सफर, इज नॉट हार्म्ड, इज नॉट एक्चुअली जैसे बोलते हैं ना कि दुखी नहीं हो. तो यहाँ पर कंपेयर किया जाता है और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आज के जो राज्य प्रशासन अधिकारी है वो बेसिकली आर मटेरियली मोटिवेटेड एंड दे लैक द वैदिक नॉलेज, दे लैक द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन. एंड इफ वी ऑल आर रूल्ड बाय दीज पीपल हु लैक द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, who are basically materially motivated and who do not have any idea of what is known as dharma or a religion. So we all can understand where they are going to lead all of us ultimately to the hell. More and more Kali Yuga would be influencing all of us, and eventually aise jo adarsh rajya hai jo परीक्षित महाराज जी के समय में था उसका धीरे धीरे पतन हम देख रहे हैं, हो रहा है आज के समय में. हरे कृष्णा. इफ एनीबडी हैज एनी क्वेरीज और क्लेरिफिकेशन. प्रभु जी का प्रश्न है कि किसी भी कारणवश यदि कोई जीव इन चार इरिलीजियस एक्टिविटीज में किसी तरह से फंस जाता है तो वो किस तरह से वहां से बाहर निकल सकता है. जैसे मैंने आपको डिस्कशन में बीच में भी बताया और प्रभुपाद जी भी बहुत क्लियर करते हैं कि एवरीथिंग इज नॉट रिलेटेड टू बर्थ, इट इज रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशंस एंड दीज क्वालिफिकेशंस आर एक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस विच मीन्स दैट वी ऑल विल हैव टू बी वर्किंग टूवर्ड्स इट. ऑटोमेटिकली नहीं आने वाली है कि भाई हम बैठे हैं एक जगह कहीं पैदा हुए हैं तो हमें इस तरह की क्वालिटीज खुद ही एक दिन सडनली उठे तो हम में सारी ब्रह्मिकल क्वालिटीज आ गई. नो, क्वेश्चन इज दैट वी विल हैव टू बी इफेक्टिवली पॉजिटिवली वर्क टुवर्ड्स इट. और वर्क का मतलब ये हुआ कि हमने जैसे फिर हमको बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे अन वैसा मन, जैसी सोसाइटी जैसा यू नो कंपनी वैसा बिहेवियर. सो अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू चूज द राइट पाथ एंड राइट पाथ इज वेयर दीज फोर प्रिंसिपल्स आर फॉलोड. सो इफ बाय व्हाटएवर डिफॉल्ट व्हाटएवर बैड सिचुएशन वी एनकर अल्टीमेटली वी विल हैव टू पुल अस आउट by the effort by ourselves, by the effort of help of other devotees, by the help of members of the family. But ultimately, jaise bolte na ke faith and consciousness has to come within to eventually move in the direction and be less influenced by avoiding the that kind of a situation. मतलब हम अगर मैखाने में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे साथ वैसा होगा, कहीं पार्टी में जाएंगे तो हमें कोई ना कोई इन्फ्लुएंस उस तरह से करेगा ही. तो मटेरियलिस्टिक जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना कि किसी भी मटेरियलिस्टिक के साथ अगर एसोसिएशन करोगे तो प्रॉब्लम आएगी. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एसोसिएशन. दी भक्तों के साथ जितना हम एसोसिएटेड रहेंगे उतना हमारा माइंड भक्ति की तरफ जाएगा, लेस मटेरियलिस्टिक होता जाएगा. एंड ओबियसली प्यूरिफिकेशन इज अ प्रोसेस विच वुड कम बाय चेंटिंग. सो इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जैसे मतलब हम कोई भी एक्टिविटी इन द क्रिएशन करते हैं तो रिएक्शन होता ही है. कोई भी मतलब एज ए जीवा वेन एवर वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द मटेरियल एनर्जी वी आर गोइंग टू एनकर द रिएक्शन. सो इन ऑर्डर टू डिक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज चैंटिंग. सो चैंटिंग एक्चुअली टेक्स अवे द इन्फ्लुएंस ऑफ बैड इन्फ्लुएंस ऑफ दैट रिएक्शन. सो अल्टीमेटली धीरे 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 प्योरिफिकेशन आती है. चेतो दर्पण मार्जनम गेट्स अप्लाइड. सो इवेंचुअली वी वुड बी एबल टू डिक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ कली. हाउएवर माया इस युग में पुल करती ही रहेगी. मतलब ये तो टग ऑफ वॉर है. एक तरफ माया खींचती जाएगी और एक तरफ जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बेसिकली जो जीव है वो या तो दो जगह जीता है, या तो माया में जिएगा या कृष्ण माया अरदास होगा या कृष्ण अरदास होगा. नाउ द चॉइस इज योर्स वेदर वी वांट टू बी माया अरदास और वेदर वी वांट टू बी कृष्ण अरदास. सो इवेंचुअली in order to become a Krishna Ardas, we will have to follow the process what other Krishna Ardas are following and leave the process what Maya Ardas are doing or following. So hopefully with time eventually we would be able to overpower the influence at some point of a time in our lifetime. Does that answer few? Hare Krishna. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय, भगवत पाद की जय।